SBS हिंदी के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला गरमाने लगा है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन हाल का विवाद मस्जिद परिसर में स्थित तथाकथित माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर को लेकर है और सिर्फ 8 महीने पुराना है। अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में कुछ महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की थी। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया था और उसे गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर को देखकर एक रिपोर्ट देने को कहा था। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोर्ट ने केवल मस्जिद परिसर को देखने का आदेश दिया था, जबकि कमिश्नर ने हिंदू पक्ष के वकीलों के साथ मस्जिद का ताला खुलवाकर अंदर जाने का प्रयास किया।
कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है उनका जो प्लेंड केस है उस प्लेंड केस के मुताबिक उसका सर्वे कराया, उसका उसका ऑर्डिनरी कमीशन कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है, ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीजें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए।
जबकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आरोप लगाया है कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें मस्जिद के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर, उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया।
वो लोग दरवाजे पर आके
खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है, हमारे यहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है, अब ये न्यायालय को देखना है।
राजनीतिक दल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अदालत का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संविधान के साथ जोड़ दिया गया था।
मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया उसमें, उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं।
मुस्लिम पक्ष की ओर से कमिश्नर को बदलने की याचिका अदालत को दी गई है, जिस पर अदालत कमिश्नर और हिंदू पक्षकारों का जवाब सुनने के बाद आज सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। चुनाव से कुछ ही महीने पहले हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्थित विधानसभा की चारदीवारी पर खालिस्तानी नारे लिखने और झंडा लगाने का संगीन मामला सामने आया है। कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक कुशाल वर्मा ने बताया कि इस मामले में सम्मिलित शरारती तत्वों की तलाश की जा रही है।
अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सुबाकों के पीछे, जो यहाँ पे आपको पता है समर्थक यहाँ पे हैं लोग, तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति का कृत्य हो सकता है, तो हम इसमें जांच करेंगे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मामले की संगीनता देखते हुए राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
जो घटना घटित हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं और हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों से मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हम शांति बनाए रखें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बहुत तो जल्दी हम जो हमने हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का, अपने पर्टिकुलर जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू करेंगे।
इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे शर्मनाक घटना बताते हुए हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज ने अपने एक परोक्ष बयान में इस मामले को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने युवा नेता तेजिंदर बग्गा के मामले को दबाने की एक चाल बतलाया।
देश के लिए और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि पूरी की पूरी भाजपा के राज्यों की पुलिस जो है एक गुंडे को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। आधी रात को हिंदुस्तान में अगर कोर्ट खुला है तो एक बार तो एक आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए खुला, और दूसरी बार मुझे याद है एक दूसरे गुंडे जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं सांप्रदायिक दंगे कराने के, उसको बचाने के लिए भाजपा की सरकार ने आधी रात को कोर्ट खुलवाया। तो जब पुलिस इस तरीके के आपराधिक तत्वों को बचाने में लगी हो तो पुलिस आतंकवादियों की कार्रवाइयों को क्या रोकेगी।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने के मामले में पंजाब पुलिस ने श्री बग्गा को हाल ही में गिरफ्तार कर पंजाब ले जाने का प्रयास किया था, जो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर विफल कर दिया था। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 मई तक श्री बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज हरप्रीत सिंह बेदी पर उनके कुछ पुराने ट्वीट दिखाकर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगाया था, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दिल्ली पुलिस को अदालतों से लगातार दो झटके लगे हैं। दिल्ली धर्म संसद में नफरती भाषण दिए जाने के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की फटकार सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार FIR दर्ज कर ली है। गौरतलब है कि अप्रैल 22 को दिए गए अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने धर्म संसद में नफरती भाषण दिए जाने की बात से इनकार किया था, जिसके खिलाफ दो लोगों हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने याचिका दायर कर कहा था कि धर्म संसद में खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई थी। इसके अलावा जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर एक निचली अदालत ने भी दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और उसे दिल्ली पुलिस की विफलता बताया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है कि बिना परमिशन के हनुमान जयंती पर तीसरी शोभा यात्रा कैसे निकाली जा रही थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने को कहा है। भारत में महंगाई की बढ़ती मार के बीच केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में दोबारा 50 रुपये का इजाफा किया है। एक महीने के अंतराल में 100 रुपये बढ़ने के बाद अब रसोई गैस की कीमत विभिन्न राज्यों में 1,000 रुपये या उससे अधिक हो गई है, जिसका लोगों द्वारा पुरजोर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे मोदी सरकार की बड़ी विफलता बताया है।
मोदी साहब ने, आपको याद होगा, पेट्रोल पंप्स पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के कहा था कि सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए, गिव अप सब्सिडी, सबसे आह्वान किया। आज ये स्थिति पैदा कर दी कि ये सिलेंडर सरेंडर करने की के दिन आ गए। ये हकीकत है मोदी साहब की सरकार की।
इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।